मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 23 अगस्त 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सौरभ कुमार, आप नवादा बिहार से हैं और नवादा बिहार से ही हैं छोटू कुमार, गरिमा वर्मा अब बस्ती उत्तर प्रदेश से, राहुल कुमार खजूरी बिहार से, श्रवण कुमार जयपुर राजस्थान से, निशा कश्यप गुड़गांव हरियाणा से और दीपांशु तिहैया भोपाल मध्य प्रदेश से। तो सौरभ, छोटू, गरिमा, राहुल, श्रवण, निशा और दीपांशु, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि आज हम किस मुख्य विषय पर बात करने जा रहे हैं और आपका अनुमान होगा 3 तलाक को लेकर, और यदि आपने अनुमान लगाया है तो गलत अनुमान नहीं लगाया है। मैं 3 तलाक विषय पर ही बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आया है, लेकिन उसे थोड़े से अलग डायरेक्शन में ले जाकर के बात करना चाहूंगा जो हमारे लिए सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जो दूसरी न्यूज है जो कम इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि मैं कहूंगा कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उस न्यूज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। और यह न्यूज न्यूज़पेपर में भी है आज के, और रात के डीडी न्यूज में भी यह थी खबर, और साथ ही साथ रेडियो न्यूज में भी है। मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट से अक्सर ऐसी खबरें चूक जाती हैं। जैसे मुझे मालूम है कि जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 तलाक पर अभी डिसीजन आया है कि असंवैधानिक है, ये सभी आपके दिमाग में होगा, आप सभी के दिमाग में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमें अच्छी से तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो दूसरी न्यूज है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में उसको लेकर संदेह हो जाए क्योंकि एक तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और दूसरा ये कि एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पकड़ होती है स्टूडेंट के पास उतनी अच्छी नहीं होती, विशेषकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसे मिस कर जाता है, ये स्वाभाविक बात है। तो आप इसे मिस न करें, इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा मित्रों कि ये, और ये जो खबर है वह है खासकर अभी अमेरिका ने अपनी जो अफगानिस्तान की नीति की घोषणा की है, अफगानिस्तान नीति की घोषणा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं तो क्यों है। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा तब तक बट नेचुरली कि आप में वो कैपेसिटी पैदा नहीं होगी, वो क्षमता नहीं आएगी कि आप महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन अपनी तरफ से कर सके। मतलब आपको अंत तक खड़े तो अपने पैरों पर ही एक दिन होना है, बैसाखियों के सहारे तो कभी न तो मतलब कि लंबी यात्राएं पूरी की जाती हैं और न प्रतियोगिताएं जीती जाती हैं, जब तक कि सभी जो प्रतियोगी हैं वो बैसाखियों वाले ही न हो। दोस्तों, जब आप अपना सिलेबस उठा करके देखते हैं, आपको ध्यान होगा कि मैं लगातार 2 बातों पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं जिसे स्टूडेंट एक तरीके से इग्नोर सा कर देते हैं, और वह है सिलेबस और दूसरा है अनसॉल्व्ड पेपर। ये 2 ऐसे लाइट हाउस हैं, प्रकाश स्तंभ हैं, जो लगातार स्टूडेंट को ये गाइड करते रहते हैं कि इधर रास्ता है और इसे दोस्तों आपको मानना ही चाहिए। तो जब आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो सिलेबस में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध, मतलब दूसरे राष्ट्रों के साथ जो महत्वपूर्ण देश है उनके साथ भी संबंधों की बात है, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके साथ भी संबंधों की बात है। लेकिन जब आप फिर अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं, जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, जहां तक क्वेश्चन पूछे जाने का सवाल है, उस सेक्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं उन पर आते हैं, और अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, राइट। पाकिस्तान के बाद आप नक्शे में जाकर के देखेंगे तो अफगानिस्तान, वो बिल्कुल बॉर्डर जैसे ही स्थिति है उसकी। तो अब ये जो अफगानिस्तान है, एक पड़ोसी देश हो गया तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, फिर जब हम अनसॉल्व पेपर पे और जाकर के नजर डालते हैं दोस्तों, तो 2013 का मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। आपके दिमाग में ये प्रश्न तुरंत क्लिक कर देगा कि नहीं नहीं, ये तो जो मामला है जो अभी राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ कहा है हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 में देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरों भरा है, ब्रैकेट में दिया सुरक्षा उलझनों से भरा है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियां हैं और उसे अपने सामरिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, ये उस समय की घटना है जब उस समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस बात की घोषणा की कि जो अफगानिस्तान में जो अमरीकी फौज है उन अमरीकी फौज को हम अब वापस बुला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल थे क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था और उनको लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो गई है। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में एक समय था जब तालिबान का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव फैलता चला जा रहा था, मतलब आतंकवादी संगठन है तालिबान, और उससे बहुत ज्यादा त्रस्त थे। तो उनको भेजा गया तो थोड़ी सी स्थिति नियंत्रण में आई और इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब हम ये जो ट्रूप है यहां इसे हम विड्रॉ करेंगे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कुछ ट्रूप्स कुछ संख्या में वापस भी बुलाए गए लेकिन पूरी तरह नहीं। जब देखा गया कि जैसे ही ट्रूप्स वापस हो रहे हैं अफगानिस्तान में फिर से तालिबानियों ने अपने हाथ पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, उनकी एक्टिविटीज फिर से बढ़ने लगी है, तो जो बचे हुए थे उनको वहीं रोक दिया गया लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। अब जब ट्रंप आए हैं तो ट्रंप ने अब यूं कह लीजिए कि जो बराक ओबामा की नीति थी उसको उलट दिया है। पहले तो ट्रंप ने भी ये कहा था, आपको ध्यान होगा चुनाव के आसपास की, हमने कोई मतलब अपनी भाषा में कह रहा हूं, हमने कोई विश्व की सुरक्षा और शांति का ठेका नहीं ले रखा है, हमारा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है हमारे देश का, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ट्रूप वापस ले लेंगे, बुला लेंगे वो। लेकिन अब जब उनको आए कुछ महीने हो गए हैं और विश्व की स्थिति को देख रहे हैं और आतंकवाद का जितना जबरदस्त कहर अब विश्वव्यापी होता जा रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक चिंता का कारण है क्योंकि अमेरिका खुद इसका विक्टिम रह चुका है। आपको मालूम है ट्विन टावर उसके किस तरह से ध्वस्त किए गए थे। तो अब अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के बारे में कहा है और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि अब हम वापस बुलाने की तो बात अलग है बल्कि अपने 4000 सैनिक वहां और भेजेंगे जो अफगानिस्तान की जो सेना है उनको ट्रेंड करेंगे और उनको ताकत प्रदान करेंगे, 4000 फोर्स और भेजेंगे। और उनका कहना है कि जो तालिबान है ताकि तालिबान पर नियंत्रण रखा जा सके। एक उदाहरण भी है दोस्तों कि जब इराक में पहले सेना ईरान में जब थी और वहां से जब विड्रॉ कर ली गई थी सेना तो उससे फिर थोड़ी सी दिक्कत आई थी और धीरे धीरे फिर जो आईएस है उन्होंने अपने हाथ पैर पसारने शुरू कर दिए थे इराक में जब ऐसा हुआ था, तो जब इराक से अपनी सेना वापस कर ली थी बराक ओबामा ने तो इराक में प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। याद रखिएगा ये इराक है दोस्तों। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो भारत के संदर्भ में बहुत मायने रखती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे पाकिस्तान को एक तरीके से चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बन गया है, वहां प्रशिक्षण हो रहा है और पाकिस्तान को चाहिए कि वह उन पर नियंत्रण रखे और अगर वो ऐसा करता है तो वो फायदे में रहेगा, अदरवाइज थ्रेट है, चेतावनी है, आप समझ सकते हैं। यानी कि उसने पाकिस्तान को भी खुली खुली चेतावनी दे दी है। और आपको मालूम है कि अभी ये पूरी पूरी दुनिया के लिए कोई रहस्य नहीं रह गया है कि पाकिस्तान बेसिकली प्रशिक्षण का अड्डा बन गया, आतंकवादियों के प्रशिक्षण का अड्डा बन गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही है ओबामा जी आपके हमारे ट्रंप जी ने वो ये कि भारत के साथ वो मिलकर इस क्षेत्र में काम करना चाह रहा है, खासकर आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। आप देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से आतंकवाद से न केवल त्रस्त ही है बल्कि लगातार इसके खिलाफ विश्व मंचों पर अपनी आवाज उठा रहा है। तो अगर अमेरिका सीधे सीधे भारत के साथ इससे जुड़ जाता है तो आप देखिए कि पाकिस्तान के को थ्रेट दे दिया है अमेरिका ने, तो पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा और पाकिस्तान अभी इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, या यूं कह लीजिए कि ध्यान नहीं दे रहा, तरजीह नहीं दे रहा ऐसी चीजों को, क्योंकि चीन का उसके कंधे पर हाथ है, चीन का उसे सपोर्ट है। तो ये तीन जो स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वहां अमेरिका अपने 4,000 सैनिक भेजेगा। नंबर दो, उसने पाकिस्तान को सीधे सीधे चुनौती दी है, चेतावनी दी है कहना चाहिए। और नंबर तीन, उसने भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। तो ये उनकी नीतियों के तीन प्रमुख तत्व हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। और देखिए कि आगे भी अब क्या होता है, वो हम जब आर्टिकल्स वगैरह डेफिनेटली इस पर आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, जो खासकर तीन तलाक को लेकर है। मैं तीन तलाक के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं, इसलिए कि आज के जो अखबार हैं वो इससे भरे हुए हैं। नो डाउट बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है, बहुत ही प्रगतिशील निर्णय है। प्रगतिशील इस मायने में कि जो मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी उनके लिए एक प्रकार से एक नए द्वार खुले हैं, और एक ऐसा द्वार खुला है जिसका सकारात्मक प्रभाव केवल तीन तलाक वाले मामले पर ही नहीं पड़ेगा। ये तो तात्कालिक प्रभाव है कि तीन बार तलाक कहने को बंद कर दिया गया है, उसी समय से बंद हो गया है, बल्कि वहां और भी जो ऐसी परंपराएं हैं, पर चाहे वो पर्सनल कानून के ही तहत क्यों न हो, जो हमारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अब बात उन पर भी आएगी, उन पर भी लोग बातचीत करना शुरू करेंगे, उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाना शुरू करेंगे, आंदोलन होंगे, जो कुछ भी होंगे, ये सारी स्थितियां होंगी। दोस्तों मेरे पास जितना वक्त बचा हुआ है उसके तहत मैं दो तीन चीजें ही आपको शायद बताने की स्थिति में रहूंगा, लेकिन चलिए हम बात करते हैं। दो तीन बातें आपको स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारा जो संविधान है वो एक राष्ट्रीय ग्रंथ की तरह है, जो सभी नागरिकों के लिए है, और आप देख रहे हैं कि इसे तीन तलाक के मामले को असंवैधानिक ही बताया गया, और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुरान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ये इस्लाम धर्म का हिस्सा है, अभी तक यही कहा जाता था कि ये इस्लाम धर्म का हिस्सा है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, और इसके लिए उन्होंने बहुत सुनवाई की है, बहुत ही स्टडी की है, और 400 पेज का जो अपना निर्णय दिया उसमें उन्होंने कोट भी किया है कि कुरान का हिस्सा नहीं है, तो ये इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म का भी हिस्सा नहीं है, और फिर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों बना रहना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि अब देखिए कि भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने बनते साथ ही अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, वो तो धार्मिक राष्ट्र, भारत ने अपने को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। अब आप देखिए कि इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद पाकिस्तान ने आजादी के कुछ ही साल बाद, ज्यादा नहीं, 5-7 साल के अंदर ही अंदर अपने यहां से तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया, जो कि धार्मिक राष्ट्र है। तो उसको कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि ये धर्म में उनके है ही नहीं। इसके बाद फिर एक देखिए, दुनिया के तो 21-22 इस्लामिक देशों से ये खत्म हो चुका है, लेकिन मैं खासकर पाकिस्तान की चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि वो वहां तो वही लोग गए ना जो भारत में थे। इसके बाद फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उससे बांग्लादेश बना, बांग्लादेश ने भी यही किया, उसने भी अपने यहां से तीन तलाक को खत्म कर दिया। और दुनिया के जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्र हैं बहुत से, 21-22 देशों के नाम है, मिस्र पहला देश था जिसने इसे खत्म किया है, तो खत्म होते चले गए। तो ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए कि इस्लामिक परंपरा ही होती, धर्म का हिस्सा होता, तो वो उसे खत्म नहीं करते। ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। जो तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है फ्रेंड्स, जो मुझे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में जिस आधार को सबसे ज्यादा महत्व दिए जाने की संभावना नजर आ रही है, वह देखिए फंडामेंटल राइट्स। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप सबकी बहुत ही अच्छी तैयारी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तैयारी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको जो घोषित किया गया है, इसमें देखिए दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है अनुच्छेद 14, जिसको लेकर के कहा गया है कि उसका उल्लंघन है, और दूसरा है अनुच्छेद 21, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। देखिए जब आप अनुच्छेद 14 को देखते हैं, अब आप देखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका जो फैलाव है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के, अगर हम अनुच्छेद की संख्या को करेंगे तो अनुच्छेद 32 तक है, 14 से 32 तक है, यानी कि 18-19 अनुच्छेद हो गए जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, लेकिन जब हम किताब में पढ़ते हैं कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप 6 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं ना, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो 6 मौलिक अधिकार। लेकिन जो अनुच्छेद का जो फैलाव है वो 14 से लेकर 32 तक है। इसका मतलब है कि एक अधिकार के तहत कई अनुच्छेद आते हैं, और वो इसलिए किया गया है ताकि उस अधिकार को वो थोड़ा सा एलोबरेट कर सके, उसे थोड़ा सा विस्तार दे सके। जैसे समता का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसी के तहत अभी 3 तलाक को असंवैधानिक माना गया। केवल इसी के तहत ही नहीं, मतलब महत्वपूर्ण ये प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि यह इनफैक्ट समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 में जिस समता की बात की गई है वह दिया गया विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में है। और फिर 18 तक जो अनुच्छेद हैं वो समता के ही हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 21। फिर हमारा जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का, जो दूसरा अधिकार मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से शुरू होकर 22 पर खत्म होता है। उसका जो 21वां अनुच्छेद है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद 21 है। तो मैं आपको खासकर, मैंने देखा है कि स्टूडेंट कुछ कंफ्यूजन उनको होने लगता है कि क्या मामला है, 6 अधिकार हैं और अनुच्छेद इतने हैं, और अलग अलग अनुच्छेद जब अखबार में आते हैं तो उनको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो मैं सलाह देना चाहूंगा कि प्लीज आप सब जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और अनुच्छेद को याद करते हुए पढ़ें, चाहे आपको याद ही क्यों ना करना पड़े, और बीच बीच में दोहराते रहें, क्योंकि आप देखेंगे कि प्री का भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए तो उसमें फंडामेंटल राइट्स पर क्वेश्चन होते हैं, और इसलिए भी कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया तो जनरल स्टडी सेकेंड पेपर में, मेंस के एग्जामिनेशन में, अगर कुछ दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपके दिमाग में अनुच्छेद हैं और फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं, तो आप उनका रेफरेंस दे करके अपने उत्तर को ज्यादा ठोस बना सकते हैं। तो दोस्तों, 3 तलाक के संदर्भ में मुझे यही बात करनी थी, और बाकी तो किताबें आज अखबार हैं उनमें काफी बातें छप आई भी हैं, और मैं इससे जुड़े हुए जो मुझे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स लगे हैं वह मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। मित्रों, आज मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स बहुत सी दे रहा हूं। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि अगर मैं बहुत सी प्रेस क्लिपिंग्स दे रहा हूं तो आपके लिए अनिवार्य नहीं होता है कि आप सबको पढ़ें, पहली बात, और दूसरी बात यह भी अनिवार्य नहीं होता है कि आज ही सबको पढ़ लें, यानी ये प्रेस क्लिपिंग्स हैं। एडिटोरियल को तो उसी दिन पढ़ करके खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ताजे ताजे होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें तो आप 1-2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं, खासकर तब जबकि आर्टिकल की संख्या ज्यादा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सुहेल इमाम, शिवकांत मिश्रा, कुंदन कुमार, पूजा तिवारी, आशुतोष तिवारी, पुष्पेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश से, दीपक जैन मंडला मध्य प्रदेश से, रंजीत रंजन पटना बिहार से, और इरफान खान, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।